अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। इसके बाद राजा पुरंजन थके मंदे भूखे और प्यासा अपने राजमहल में लौट कर आए। लौटने के बाद उन्होंने स्नान किया और यथोचित भोजन किया, तब उसने विश्राम किया और इस तरह सारी थकान से वह मुक्त हो गया। तात्पर्य शिल एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भौतिकवादी मनुष्य पूरे सप्ताह अत्यधिक परिश्रम करता है, वह सदैव पूछता है धन कहाँ है, धन कहाँ है। फिर सप्ताह के अंत में वो इन कार्यों से छुट्टी लेकर विश्राम करने के लिए किसी एकांत स्थान में जाना चाहता है। राजा पुरंजन अपने घर में इसीलिए लौट आए क्योंकि जंगल में पशुओं का शिकार करते करते वह अत्यधिक थक चुका था। इस प्रकार उसके अंतकरण में उसे और पाप करने से मना करके उसे अपने घर लौटने के लिए विवश किया। भगवद गीता में भौतिकवादी व्यक्ति को बताया गया दुष्कृति न, इसका अर्थ है कि वह हमेशा पाप कर्मों में लगे रहते हैं। जब मनुष्य को चेतना होती है कि वह पाप कर्मों में लगा है तो इसका विवेक जागता है, जिससे यहाँ पर रूपक के अलंकार की भाषा में महल कहा गया है। सामान्यतः भौतिकवादी मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होता है और रजोगुण और तमोगुण का परिणाम होता है काम और लोभ। भौतिकवादी मनुष्य के जीवन में कर्मठता का अर्थ है काम और लोभ के वशीभूत होकर कार्य करना, किंतु जब उसकी चेतना जागृत होती है तो वह निवृत्ति चाहता है। वैदिक सभ्यता में ऐसे निवृत्ति के लिए संस्तुति की गई है और जीवन के इस भाग को वानप्रस्थ कहते हैं। भौतिकवादी के लिए तो वानप्रस्थ और भी आवश्यक है क्योंकि वह पापमय जीवन के कार्य से निवृत्त होना चाहते। राजा पुरंजन का घर में आना, स्नान करना और फिर उपयुक्त भोजन करना, ये बताता है कि भौतिक व्यक्ति को पापमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिए और गुरु स्वीकार करके शुद्ध होकर उसे जीवन के मूल्य के बारे में सुनना चाहिए। ऐसा करने पे उसे नवीनता महसूस होगी, जिस प्रकार की स्नान करने से होती है। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा लेने के प्राप्त करके सभी प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए, जैसे कि अवैध मैथुन, मद्यपान, द्रुत क्रीड़ा और मांसाहार। इस शब्द में उचित आहार शब्द महत्वपूर्ण है। उचित का मतलब है उपयुक्त, मनुष्य को उपयुक्त भोजन ही करना चाहिए। जिस तरह सुअर विष्ठा के लिए दौड़ता है उस तरह हमें भोजन के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए। भगवद्गीता के 17वें अध्याय में बताया गया कि मनुष्य के भोज्य पदार्थों का सात्विक आहार के शीर्षक से वर्णन हुआ है। मनुष्य को रजोगुण तमोगुण भोजन नहीं करना चाहिए, यही उचित आहार का भोजन करना है। जो लोग हमेशा मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, वो जो रजोगुण और तमोगुण का आहार है उन्हें इन वस्तुओं को त्याग कर देना चाहिए, जिससे उनके वास्तविक चेतना जागृत हो जाए। इससे मनुष्य शांत और तरोताजा हो सकता है। यदि कोई अशांत रहता है या थका हुआ है तो ईश्वर का ज्ञान नहीं समझ सकता। भागवत में बताया गया एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगत भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। जब तक मनुष्य रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं होता उसे शांति नहीं मिलती और बिना शांति के ईश्वर के ज्ञान को समझना मुश्किल है। राजा पुरंजन का अपने घर लौटना मनुष्य का अपनी पूर्व चेतना में लौटने का सूचक है। यह पूर्व चेतना है कृष्ण चेतना, जिसने अनेक पाप कर्म किए हों, विशेष रूप से जंगल में पशुओं का शिकार किया हो, उसके लिए कृष्ण चेतना या भक्ति नितांत आवश्यक है। ओम ज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति सपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवंश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णा पदान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमा ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब कृतवित वैष्णव की चरणों में वंदना करता हूँ। स्पेशली वो वैष्णव जो ब्रजभूमि के पवित्र स्थान में निवास कर रहे हैं। देवताओं का भी इतना सौभाग्य नहीं होता कि ब्रजभूमि के दर्शन भी कर सके, और निवास करना तो बहुत दूर की बात है। मथुरा महात्म्य बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ही दिनों के लिए अगर ब्रजभूमि में वास करता है तो उसको कृष्ण की कृपा की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन वास्तव में उस कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारा निवास इस तरीके से होना चाहिए कि हम सेवा भाव में हों और भगवान की कृपा के लिए लालायित हों। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं द प्राइस फॉर अटेनिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज इंटेंस ग्रीड। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए लौल्यम, एक लोलुपता होनी चाहिए। मुझे भगवान को प्राप्त करना है किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कीमत पर मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी है, ऐसा दृढ़ निश्चय जिसके अंदर है वो भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान राधा श्याम सुंदर से और आप सब से कि मुझे भी ये लोलुपता जागृत हो भगवान की कथा सुनने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, उनका नाम लेने के लिए, क्योंकि ऐसी लोलुपता के द्वारा भगवान आकर्षित होते। स्पेशली ये जो सप्ताह हम मना रहे हैं पूरे इस्कॉन में वर्ल्ड होली नेम वीक, भगवान का नाम जब कीर्तन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करना, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम इस 15 दिन के लिए जब ज़्यादा करें, हो सके तो 20 माला या 25 माला या 32, अपनी दूसरी सेवाओं को करते हुए ज़्यादा नाम जप करें। नाम जप में इतनी शक्ति है कि अगर कोई व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों जन्म भी पाप किए हों, मांस खाना, परस्त्री संग करना, कई मर्डर भी किए हों करोड़ों जन्म के, अगर कोई सच्चे दिल से एक बार नाम लेते हैं तो उसके सारे पाप दूर हो जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ये करना ही होगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पाप करके फिर नाम लेना, लेकिन कितना भी बुरा बैकग्राउंड, शास्त्रों में बताया गया जैसे एक अपने एक बहुत बड़ा घास का ठेला रखे है जो भूसा जो जानवरों के लिए भोजन होते हैं, उसमें आप एक छोटी सी चिंगारी डालें, एक छोटी सी माचिस की तीली लगाएं और पूरा जल के भस्म। ऐसी भगवान के नाम की महिमा है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये दो अक्षर हरि, इसमें सब कुछ है। वेदे च रामायण इतिहास पुराणे च चार वेद 18 पुराण 108 उपनिषद, ये सब शास्त्रों का ज्ञान इन दो अक्षरों में है। और वो है हरी 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 हरी, बस जस्ट चैंट हरी, नो मोर वरी। ये सप्ताह जो है, सप्ताह नहीं, इस बार जनरली एक सप्ताह होता है, इस बार दो सप्ताह का कार्यक्रम है, 28 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक, ऑलमोस्ट 16 दिन हमारे लिए स्पेशल मेडिटेशन है कि हम कैसे अपने नाम जब को सुधारें। प्रचार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आचार होता है, अपने स्वयं का आचरण। अगर प्रचार बहुत अच्छा कर रहा हूँ और मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है, मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, मैं स्वयं नाम जब नहीं कर पा रहा गहराई के साथ, तो फिर क्या लाभ है इसमें। पहले मुझे अपने आप को सुधारना चाहिए। आज का प्रवचन मैं अपने लिए दे रहा हूँ कि मैं इतना बोल रहा हूँ हरि नाम के बारे में, क्या मैं स्वयं वास्तव में नाम का आश्रय ले रहा हूँ? क्या वास्तव में भगवान को मैं पुकार रहा हूँ? क्या वास्तव में मेरे अंदर वो एक छोटे बालक की तरह भावना है, जैसे छोटा बालक माँ को पुकारता है? अगर नहीं है तो मतलब मुझे और अपने जप में सुधार करना है। अगर मुझे पुकारने की भावना नहीं आ रही, इसका मतलब अभी भी मेरे हृदय में बहुत अपराध की भावना है। कैसे इन अपराधों से मुक्त होएं, कैसे मैं ज़्यादा गहराई में जाऊं, इस पर मनन करना, शिला प्रभुपाद के ग्रंथों से सीखना कि नाम की महिमा क्या है, कैसे नाम हमारे आराध्य देव हैं। जिस तरह से पुजारी राधा श्याम सुंदर को आरती कर रहे हैं, इसमें उनका पूरा ध्यान भगवान के चरणों में होता है। हो सकता है कि पुजारी को आरती के बाद रसमलाई और महाप्रसाद भी मिलने वाला हो, लेकिन आरती के समय उसका ध्यान वो नहीं होता, उसका ध्यान होता है मैं बस भगवान के सामने हूँ। ये 25 मिनट हैं पूर्ण ध्यान के साथ भगवान राधा श्याम सुंदर की आरती में लगा। 1 pointed अटेंशन, फोकस्ड, एकाग्रता के साथ। ऐसे जब हम जप कर रहे हैं तो ये भी एक 2 घंटे की आरती है। हम हरि नाम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, हरि नाम प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपनी पूरी चेतना को उसमें अर्पण कर रहे हैं। अगर आप ऐसे जप करोगे तो आपको अलग ही प्रभाव महसूस होगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। जो जिस भावना से मेरे पास आता है, मैं भी उसके साथ वैसे ही व्यवहार करता हूँ। अगर हमारे नाम जप में ऐसी भावना है तो हमें वास्तव में कृष्ण की उपस्थिति का अनुभव होगा। कृष्ण है कली काले नाम रूपे, कृष्ण अवतार, कृष्ण है अपने नाम से अभिन्न है। लेकिन जिसके ऊपर, जिसके अंदर ये भावना है, उस हृदय की तन्मयता है, तब कृष्ण का अनुभव होगा। आज के श्लोक में हम राजा पुरंजन की कहानी सुन रहे हैं, नारद मुनि ये कहानी बता रहे हैं। और एक्चुअली वो कहानी किस लिए बता रहे हैं, वो कहानी वो राजा प्रचिनामार्षित को बता रहे हैं और अंत में बताने वाले हैं कि ये जो कथा है वो आपके बारे में ही है। कोई बड़े राजा है या कोई बहुत ही बड़े मंत्री है, उसको आप सीधा कहें कि आप माया में हो, आप बाहर निकलो, तो बहुत बुरा लगेगा। तो उनका तरीका क्या है कि वो कहानी बता रहे, एक राजा था, इस तरह शिकार कर रहा था, इस तरह सब हो गया। और फिर कहानी सुनते सुनते उनको पता चलता है कि ये कहानी मेरे बारे में, एलेगोरिकल स्टोरी है। एक्चुअली नारद मुनि एक्सपर्ट प्रीचर है, एक बुद्धिमान प्रचारक जानते हैं कि किस तरह से श्रोता के मनोभाव को जान करके किस तरह से वचन बोलने हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव हो उनकी चेतना के ऊपर। श्री मायापुर धाम में भी एक स्थान है, सुवर्ण विहार, आप में से कोई गए हैं सुवर्ण विहार? वहाँ पर एक राजा थे सुवर्ण सेन। राजा सुवर्ण सेन अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों में इतने मग्न थे, धन कमाने में, राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में, कि उनको कृष्ण भक्ति के लिए कोई समय नहीं था। नारद मुनि आए, नारद मुनि को ज्ञान दिया, इस तरह से ज्ञान नहीं दिया कि आप माया में हो, ऐसी कहानी बताई कि एक राजा थे और वो बहुत इंद्रतुप्ति में लगे थे और इस तरह मनुष्य जीवन को व्यर्थ कर रहे थे। और कहानी सुनते सुनते राजा को पता चला कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। और फिर वो राजा सब कुछ छोड़कर नारद मुनि के चरणों में गिर पड़े, मेरा उद्धार कैसे होगा? नारद मुनि बोले, आपका सौभाग्य है कि आप नवद्वीप धाम में रह रहे हो, ये सुवर्ण विहार भी नवद्वीप का ही भाग है और ये सतयुग चल रहा है इस समय, ये सतयुग की कहानी है। सतयुग के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा और कलयुग में इसी भूमि में स्वयं गौरंग महाप्रभु प्रकट होंगे और आप भी उनकी लीलाओं में भाग लेंगे। ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और वो गौरंगा 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 का नाम लेते हुए उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे और सब आसक्ति नष्ट हो। तो प्रभुपाद आज के तात्पर्य बताते हैं कि कैसे एक संसारी व्यक्ति धन कमाने में व्यस्त हो जाता है। धन कमाना जो है ये कुछ आवश्यक है गृहस्थ आश्रम में, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन कुछ हद तक प्रयास करना चाहिए, लेकिन अंत में जानना चाहिए कि सब कुछ कृष्ण के द्वारा निर्धारित है। किस व्यक्ति को कितना धन मिलना है और धन का उपयोग किस कार्य में होना है, वो सब कर्मों से पहले निर्धारित है। मेरे सौभाग्य में 10,000 लिखा है तो 10,000 ही मिलेगा, चाहे मैं 24 घंटे मेहनत करूं या 8 घंटे मेहनत करूं, पहले से लिखा हुआ। अगर आप ज़्यादा कमा भी लें तो वो डॉक्टर की फ़ीस में चला जाएगा या लॉयर की फ़ीस में या चोर चुरा लेंगे, कि जो कर्मों के विधान को बदला नहीं जा सकता। इसलिए भक्त को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं 7th कैंटो में कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे गृहस्थ आश्रम में, ज़्यादा से ज़्यादा, और जैसी उम्र बढ़ती है तो वो भी कम कर देना चाहिए। 25 साल की उम्र में ठीक है 8 घंटे, 25, 35, 40 तक, फिर 40 के बाद धीरे धीरे 7 घंटे, 6 घंटे, फिर 50 के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए और फिर अपने असली लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। वो असली लक्ष्य है अर्थात ब्रह्म जिज्ञास, भगवत साक्षात्कार, नामस्मरण। आजकल कलयुग में सुविधाएं बहुत कम है वानप्रस्थ आश्रम के लिए, जंगल जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब जगह जंगल ही है, द्विपद पशु हैं। लेकिन व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जिस भी स्थिति में है, जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो सारा समय श्रवण और कीर्तन और भगवान की सेवा में लगाएं। ऐसा नहीं कि हम आखिरी क्षण तक वेट करें। मनुष्य जीवन एक सुनहरा अवसर है भगवत साक्षात्कार के लिए और श्रवण और कीर्तन उस फल को प्राप्त करने का तरीका है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से समझा रहे हैं कि व्यक्ति को अपनी मूल कृष्ण भावना को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए और ऐसा करने से हम जीवन की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है कि कैसे गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना चाहिए। श्री चैतन्य भागवत में सॉरी, एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं और एक दिन वो भक्तों को बोलते हैं, महाप्रभु अलग अलग घरों में प्रसाद लेते थे और एक दिन भक्तों को बोले, कल से मैं उसी भक्त के घर में प्रसाद लूँगा जो लखपति हैं। सारे भक्त निराश हो गए। उस जमाने में लोगों के पास लखपति बहुत कम थे, उसमें पैसे की वैल्यू भी ज़्यादा थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब प्रभुपाद भारत में थे अमेरिका जाने से पहले, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 1 रुपये में एक परिवार का पूरा दिन का खाना भोजन हो जाता था, 1 रुपये में। हरे कृष्ण, आज 1 रुपये में आपको हर एक आलू भी नहीं मिलेगा, शायद एक सड़ा हुआ टमाटर मिल जाए, है ना। उस जमाने में ऐसा था। तो ये प्रभुपाद के समय था और उसके पहले 500 साल पहले क्या कीमत थी पैसे की, लखपति बहुत कम थे। सारे भक्त निराश हो गए, प्रभु आप अगर हमारे घर नहीं आओगे, क्योंकि जब साधु संन्यासी किसी घर में भोजन स्वीकार करते हैं तो उस गृहस्थ आश्रम में भक्त का उत्थान होता है, और अगर आप हमारे घर नहीं आओगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा। तो महाप्रभु ने हंसकर जवाब दिया कि आप समझे नहीं मेरे कहने का तात्पर्य। लखपति का है जो रोज एक लाख नाम जप करे, एक लाख मतलब कम से कम 64 माला, सब भक्त फिर जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वास्तव में जब श्रील प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया तो प्रभुपाद जी भी पहले शुरुआत में यही कहे कि 64 माला रोज करना है, 64। लेकिन भक्तों ने बोला प्रभुपाद हमारे पास समय नहीं है, हम बहुत बिजी हैं, हम बहुत व्यस्त हैं, हमें दूसरे भी कार्य होते हैं, है ना। प्रभुपाद जी बोले ठीक है 32 करिए। फिर भक्त बोले नहीं नहीं हमारा मन बहुत चंचल है, हम इतना भी नहीं कर सकते। बार्गेनिंग, जैसे आप मार्केट में सब्जी खरीदी करने जाते हैं तो थोड़ा दाम करते हैं। अंत में प्रभुपाद जी बोले ठीक है 16 और इससे कम नहीं। शायद प्रभुपाद अलाउ करते तो डिवोटी 2 या 3 में आ जाते थे, शॉर्टकट है ना। मतलब प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हम धीरे धीरे बढ़ाएं जप को। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं वी हैव कैप्ट 16 राउंड्स फॉर नियोफाइट डिवोटीज सो दैट दे विल नॉट फील बर्डन। ये 16 माला हमने रखा है नियोफाइट के शुरुआत के लिए, लेकिन जैसे हमारी उम्र बढ़ती है और भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो अपने आप नाम जब बढ़ाते जाना चाहिए। जैसे हर व्यक्ति को अब कोई कंपनी में जॉब करते हैं उसके अभिलाषा होती है मेरी तनख्वाह बढ़ती जाए, जैसे हम भक्ति में भी आगे बढ़ते जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि हम घर की जिम्मेदारियों को छोड़ दें या मंदिर की सेवा को कम करें, लेकिन वो सब करते हुए नाम में रुचि जागृत करें। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं हाउ टू डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम, भगवान के नाम में रुचि कैसे जागृत हो। हम आप सबसे भक्तों से पूछेंगे, हम राधा श्याम सुंदर प्रभु जी बताएंगे। राधा श्याम सुंदर प्रभु सबसे सिंसियर डिवोटी हैं चैंटिंग में, मिशन को इंटरेस्ट आता। प्रभु जी से मैंने से पूछा कि मैं भगवत धाम प्राप्त होऊंगा कि नहीं मुझे, तो प्रभु जी बोले कि आप जप करते रहिए तो जरूर हो जाएंगे, मेरे को आशीर्वाद दिया ना। जैसे राधा श्याम सुंदर प्रभु बताइए कैसे रुचि जागृत हो। हाँ, जिनकी रुचि है उनका संग लेके। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, हाउ डू यू बिकम ड्रंकर्ड। यस, कौन बताएगा? वृंदावन बिहारी प्रभु, शराबी कैसे बनते हैं? शराबी का संग, प्रभु जी अनुभव से बता रहे हैं। अभी इस कॉन्फ्रेंस से पहले जो भी है कोई बात नहीं। आशा की बात सत्य नहीं है, लेकिन तो शराबियों के संग से मैंने सुना है कि पहले जब शराब पीते तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पीते पीते रुचि जागृत होती है। जैसे होते हैं ना अधो श्रद्धा तथो साधु संग, जैसे शराबी संग से शराब में रुचि आती, हरि नाम से वैष्णव के संग में रम लेते। तो यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, मंदिर में सब भक्त मिलकर जप करते हैं, कोई प्रभुपाद हाउस में, कोई मंदिर में, कोई यहाँ पर। अकेले जप करना भी अच्छा है बहुत बड़े महान भक्तों के लिए, हरिदास ठाकुर की तरह। अभी तक हम हरिदास ठाकुर बने नहीं हैं और न ही बन सकते हैं जीवन में, इसलिए हमारे लिए संग में करना अच्छा। स्पेशली ग्रुप में जप करने से क्या होता है कि 5-6 लोग हैं तो कोई ना कोई तो जागरूक होते हैं, कि जप में कॉमन चीज़ है नींद आ रही होती, तो कोई दूसरा कोई भक्त हमें उठा देता है। कई बार हमें बुरा भी लगता है। एक बार मैं जप में सो रहा था कुछ एक हफ्ते पहले, एक डिवोटी ने मेरे को प्रेम से जरा स्पर्श किया, तुरंत मुँह से निकला मैं सो नहीं रहा था। पहला रिएक्शन नहीं होता। तो संघ की जरूरत, एसोसिएशन। और दूसरा चीज़ है, प्रभुपाद जी बोलते हैं हाउ डज वन बिकम ड्रंकर्ड, शराबी कैसे बनते हैं, जस्ट पीते पीते नशे में रुचि जागृत होती। इवन आपको रुचि नहीं हो तो भी नाम लेते रहिए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे, जस्ट करते 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 करते। जैसे बच्चों को हम देखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, चलना सीखते हैं या साइकिल चलाना सीखते हैं। आप ऐसे कितने भक्तों को आता है साइकिल चलाना या स्कूटर चलाना, है ना, सभी को आता होगा। नहीं, वृंदावन बिहारी प्रभु आपको याद है आपकी बाल्य लीला, आप जब साइकिल चलाना सीखते थे, नहीं? आप तुरंत एक बार बैठे और चलने लग गए। आप प्रयास करते हैं, फिर कई बार गिर जाते हैं, चोट लगती है, फिर उठते हैं। ऐसे नाम जब भी ऐसे, हमें निराश नहीं होना चाहिए। श्री कदम कानन महाराज का एक मैसेज मेरे मोबाइल पे कल आया था, बता रहे थे कि नाम जब करने में अगर हमें रुचि भी नहीं मिले तो भी नम्रता आ जाती है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ फिर भी रुचि नहीं है, तो मैं कितना पतित हूँ। और फिर नम्रता के कारण फिर भगवान को पुकारने का भाव आता है। नम्रता बहुत आवश्यक है भगवान के नाम जप में सफलता के लिए, टू बी हम्बल, नम्र। श्री चैतन्य चरितामृत में एक कहानी है कि एक बार, चैतन्य चरितामृत में नहीं, दूसरे ग्रंथ में, चैतन्य महाप्रभु अपने एक मित्र के साथ जा रहे थे, नौका विहार कर रहे थे, और वो भी स्कॉलर थे, महाप्रभु विद्वान थे, निवाई पंडित, और उनके मित्र भी विद्वान थे। महाप्रभु उनको बोला, आज मैंने एक नए पुस्तक लिखी है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, और अपने ग्रंथ से सुनाने लगे। जब उनके मित्र ने सुना तो उनके आँखों से आंसू आने लगे और रोने लगे। तो महाप्रभु ने पूछा कि आप क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो, क्या आपको कोई दुख हो रहा है, क्या कारण है? बोले, मैंने भी ऐसा ग्रंथ लिखा है, इसी विषय पर मैंने भी लिखा है, लेकिन आपका ग्रंथ इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपके ग्रंथ को सुनने के बाद मेरे ग्रंथ को कोई पढ़ेगा नहीं, सुनेगा नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि मेरे सहपाठी, मेरे क्लासमेट, मेरे मित्र को मेरे ग्रंथ के कारण कष्ट हो रहा है, तो उन्होंने उठा के अपने ग्रंथ को पानी में फेंक दिया, गंगा जी में। आज किसी को पता नहीं वो ग्रंथ कहाँ है। अभी आज वो ग्रंथ अगर होता तो कितना अच्छा था, महाप्रभु के हस्तलिखित कोई ग्रंथ नहीं है। लेकिन महाप्रभु बता रहे हैं कि ग्रंथ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो शिक्षा, कि त्रिनादपि सुनी छेना, अपने आप को हीन मानना, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं मान की इच्छा नहीं करना, ये गुण बहुत दुर्लभ है। और ये गुण प्राप्त करने पर ही भगवान का नाम हमेशा ले सकते हैं। अभी आज के मटेरियल वर्ल्ड में भी कंपटीशन होता है, दो विद्यार्थी होते हैं, तो जब मैंने भी किताब लिखी है, किसी और ने भी लिखी है, तो स्पर्धा की भाव होती है, और लोग प्रयास करते हैं कि शायद दूसरे के ग्रंथ को फेंक दें, या हो सकता है उसी को उठा के फेंक दें। मटेरियल वर्ल्ड में आपको मैनेजमेंट सर्कल में सिखाया जाता है कि कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए दूसरों के सिर के ऊपर पैर रखो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। जैसे मुंबई, दिल्ली या बड़े बड़े शहरों में इतने कॉम्पिटिटिव लाइफ है, बिजनेस सर्कल में हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है, लेकिन वैष्णव का चरित्र उल्टा होता है। वैष्णव सोचते हैं मुझे प्रगति करनी है तो दूसरों के चरणों में मैं अपने सिर को रखूं, दूसरों की कृपा से प्रगति। और जब कोई एक वैष्णव ज़्यादा आगे बढ़ता है तो दूसरे वैष्णव को खुशी होती है। हम चैतन्य चरितामृत में देखते हैं, कभी कभी चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी का गुणगान करते हैं कि रूप गोस्वामी ने क्या किया, एक श्लोक लिखा तुंडे दंडावनि हरि नाम के बारे में, और वो श्लोक पढ़ के महाप्रभु इतने खुश हुए, सबको दिखाने लगे, ये देखो ये नाम के बारे में श्लोक है, जब मैं दो अक्षर बोलता हूँ कृष्णा 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 कृष्णा, तो मेरी इच्छा होती है मेरे पास लाखों जीवा हो, और जब ये नाम मेरे कानों में जाता है तो मेरी इच्छा होती है मेरे पास लाखों कान हो, जब ये मेरे हृदय में आता है तो हृदय को जीत लेते हैं और मेरी इंद्रियां स्तब्ध हो जाती। तो ये श्लोक रूप गोस्वामी ने लिखा और महाप्रभु सबको दिखा रहे हैं। हरिदास ठाकुर को दिखाया जो नामाचार्य हैं, और हरिदास ठाकुर बहुत प्रसन्न हो गए। अभी हरिदास ठाकुर ये नहीं सोच रहे, अरे मैं तो नामाचार्य हूँ, मेरे डिपार्टमेंट में भी आ गया अभी है ना, ये तो मेरा डिपार्टमेंट है। कभी कभी भक्तों में होता है ना, मेरा डिपार्टमेंट, आपका डिपार्टमेंट, ये तो ज़रूरत है संस्था में डिपार्टमेंट बनाना, लेकिन अंत में हम सब एक ही उद्देश्य से कार्य कर रहे। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य हैं, लेकिन जब रूप गोस्वामी के लेख को सुनते हैं तो इतनी प्रसन्नता होती है, बोलते मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े हैं हरि नाम के बारे में, लेकिन इतना सुंदर श्लोक कहीं नहीं देखा। फिर श्री चैतन्य महापुरुष सर्वम भट्टाचार्य और रामानंद राय के पास जाते हैं और ये श्लोक पढ़ के सुनाते हैं, रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं, और उनके मन में हर्ष होता है, खुशी होती है। आप जान सकते हैं कि आप भक्ति में कितने आगे बढ़े हैं जब आपके साथ वाले भक्त हैं, जब उसकी प्रशंसा होती है या उनकी प्रगति होती है या उनका प्रमोशन होता है, तो आपके मन में क्या भावना आती है, क्या दूसरों की प्रशंसा को सुन के उल्लासित होते हैं या हर्षित होते हैं, या मन में आता है उसको क्यों इतनी गुणगान हो रहे हैं, मेरी महिमा को लोग समझ नहीं रहे, मैं इससे ज़्यादा अच्छा प्रवचन कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। तो ये जो भावना है ईर्ष्या की, ये भव बंधन में रहने का कारण है। और ये जो भावना है जो रूप गोस्वामी में है, दूसरों की प्रशंसा, वैष्णवों का गुणगान करने की, वैष्णवों की महानता को सुन के प्रसन्न होने की, ये भावना हमें कृष्ण भक्ति में और आगे ले जाती है। श्री चैतन्य महाप्रभु कभी कभी हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी से मिलने के लिए आते थे। हरिदास ठाकुर को जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करना वर्जित था, क्योंकि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनको भी मंदिर में आना मना था। हालांकि ये तो उच्च कोटि के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने नवाब हुसैन शाह की नौकरी की थी, इसलिए उनको बहिष्कृत कर दिया गया था, आउटकास्ट कर दिया गया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर जब भी जगन्नाथपुरी में रहते तो उनका एक ही रहने का स्थान था, और वो था सिद्ध बकुल। तो सनातन गोस्वामी, हरिदास ठाकुर साथ में रह रहे थे, दोनों आपस में बात कर रहे थे, अचानक चैतन्य महाप्रभु आ गए। चैतन्य महाप्रभु सनातन को देख के बोले, सनातन, अगर देह त्याग करने से अगर कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है तो मैं कोटि कोटि बार देह त्यागने को तैयार हूँ। कृष्ण की प्राप्ति देह त्याग से नहीं होती, कृष्ण की प्राप्ति होती है भजन से। इसके पहले क्या हुआ था मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इसके पहले सनातन गोस्वामी मन ही मन सोच रहे थे कि मैं जगन्नाथपुरी में जाऊँगा और वहाँ पर मंदिर में तो मुझे प्रवेश वर्जित है, और मैंने सुना है कि महाप्रभु का निवास स्थान गंभीरा है, वो भी मंदिर के पास में है, तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर मैं उनके पास में जाऊँगा, मैं इतना अपवित्र हूँ, सब पुजारी भी अपवित्र हो जाएंगे मेरे को देख के, ज़्यादा अच्छा है कि मैं रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के रथ के पहिए के नीचे लेट जाऊँगा और पवित्र स्थान में भगवान जगन्नाथ को देखते हुए देह त्याग करने से मुझे अच्छी गति की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा मन में सोच रहे थे, बताया नहीं था, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ हैं, वह सबके मनोभाव को जानते हैं, इसलिए तुरंत ताड़ लिया। उन्होंने सनातन गोस्वामी को डांटा कि देह त्याग करने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी। गिव अप दिस नॉनसेंस मेंटेलिटी, कुबुद्धि छाड़िया। कुबुद्धि, एक सद्बुद्धि होती है और एक कुबुद्धि। कुबुद्धि यानी खराब बुद्धि त्याग दो। कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन, श्रवण और कीर्तन करो। अचिर पाइबे कृष्ण प्रेम धन। अचिर, अचिर मतलब बहुत जल्दी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। श्री चैतन्य महाप्रभु उनको बताते हैं, दीनेर अधिक दया करे भगवान, पंडित कुली न बड़ अभिमान। भगवान दीनों पे ज़्यादा दया करते हैं, पंडित पर नहीं। ऐसे नहीं आपने शास्त्र पढ़ लिए तो ज़्यादा भगवान के पास पहुँच गए, बल्कि कई बार देखा जाता है ज़्यादा शास्त्र पढ़ने से अभिमान भी बढ़ जाता है। शास्त्र पढ़ना चाहिए लेकिन नम्रता ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर शास्त्र पढ़ने से गर्व होता है, उससे अच्छा कोई अनपढ़ हो और वो नम्र हो, वो भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। गोपियाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गजेंद्र हाथी कोई बहुत पंडित नहीं थे, सुदामा के पास क्या संपत्ति थी, कुब्जा का क्या सुंदरता थी। भगवान इन भौतिक गुणों से प्रसन्न नहीं होते, भगवान प्रसन्न होते हैं नम्रता से, सेवा भाव से। वो फल बेचने वाली जो बहुत ही निम्न जाति की थी, वृंदावन में वो फल बेच रही थी, और भगवान श्री कृष्ण जैसे उन्होंने देखा था कि कुछ अनाज के दाने देने पे फल मिलते हैं, तो कुछ अनाज के दाने लेकर गए और फल बेचने वाली इतनी खुश हो गई कृष्ण के रूप को देखकर, सब कुछ दे दिया, सारे फल दे दिए, और श्याम सुंदर जी ने उनकी पूरी टोकरी रत्नों से भर दी। कहाँ फल जो कुछ ही छोटी कीमत के थे और कहाँ हीरे रत्न मणियाँ। हम भगवान को जो चीज़ देते हैं बहुत तुच्छ चीज़ें हैं, हम भगवान को दे ही क्या सकते हैं, सब कुछ तो भगवान का है। हम अपना समय देते हैं, अपनी कोई योग्यता देते हैं जो कांच के टुकड़े के समान, जो फल के समान, और भगवान हमें देते हैं हीरे। वो हीरा है हरि नाम चिंतामणि, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त पूर्ण शुद्ध अभिन्न नाम नाम। हरि नाम एक बहुत सुंदर ग्रंथ है, हरि नाम चिंतामणि। आज शाम को 5 बजे हम उस पर चर्चा करेंगे, अगर आपके पास समय है तो जरूर आना। तो हरि नाम चिंतामणि में बताया गया कि नाम की क्या कीमत है। नाम की कीमत तो कोई समझ नहीं सकता, सिर्फ इशारा किया जा सकता। जैसे कोई बोले कि चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा वो ऊपर है, कहाँ पर है, वो पेड़ के ऊपर है। अभी पेड़ के ऊपर चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा तो बहुत ही ऊपर है, लेकिन इसको बोलते हैं शाखा चंद्र न्याय। तो किसी चीज़ के बारे में ज्ञान देने के लिए सांकेतिक रूप से कुछ इशारा किया जाता है। ऐसे भगवान के नाम की महिमा को ब्रह्मा शिव भी नहीं समझ सकते, अनंत शेष हजारों फणों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं वो भी भगवान की महिमा का अंत नहीं प्राप्त करते, लेकिन थोड़ा सा अंश शास्त्रों में दिया गया जिससे कि हमें पता चले कि कितनी मूल्यवान चीज़ है। जब हम बीड बैग में हाथ डाल रहे हैं तो कितनी बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण प्रिय सेवा है भगवान को, ये नाम की सेवा, हरि नाम सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं अपने भजन में, एनेचे औषधि माया नाशी बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मागी। एनेची औषधि माया, आई ब्रॉट दिस मेडिसिन, ये औषधि में लेके आया हूँ। और औषधि क्या है? हरि नाम महामंत्र। मैं कल कहानी बता रहा था, जब श्रील प्रभुपाद गृहस्थ आश्रम में थे तो उनकी दुकान थी प्रयाग में, प्रयाग फार्मेसी, दवाइयों की दुकान थी। अपने गुरु भाई को बता रहे थे कि मैं ये दवाई पूरे विश्व में बांटना चाहता हूँ, ये टॉनिक जो है सब जगह बांटना चाहता हूँ, हरि नाम का। सब लोग पीड़ित हैं इस दुनिया में हरि नाम की कमी के कारण। और फिर डॉक्टर ओबीएल कपूर ने प्रश्न पूछा कि आपकी जो दवाई है टॉनिक, इसका फॉर्मूला बताइए, क्योंकि हर एक दवाई का एक फार्मूला होता है जो सबके सामने बताया नहीं जाता। अगर मैं दवाइयाँ बना रहा हूँ और मैं आपको फार्मूला बता दूंगा तो आप बना देंगे और अपने नाम से बेचेंगे, फिर मेरा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं रहेगा। तो प्रभुपाद जी बोले उसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, त्रिनादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान दे न कीर्तनीय सब। फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हमारे पास बॉटल होगी, लेबल होगा, लेकिन अंदर दवाई नहीं होगी। ऐसा हमारा यही हो रहा है, हम हरि नाम ले रहे हैं क्योंकि त्रिनादपि सुनीचे न भाव नहीं है, तो भाव नहीं होने के कारण भगवान की उपस्थिति का अनुभव नहीं हो पाता। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जैसे संत हमें बताते हैं कि जब हम नाम जप करते हैं तो मन ही मन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रार्थना करना है कि हे प्रभु मेरी जीवा के ऊपर प्रकट हुई है, मैं एक बद्ध जीव, तीन गुणों से पीड़ित हूँ, असंख्य दोष हैं, लेकिन मैं आपके नाम लेने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई कंगाल व्यक्ति करोड़पति बनने का प्रयास कर रहा हो, जैसे कोई मूर्ख व्यक्ति कोई बड़े पीएचडी के थीसिस लिखने का प्रयास कर रहा हो, से मेरी कोई पात्रता नहीं है, नाम लेने के लिए मेरी कोई योग्यता नहीं है, कृपा करी नाम रूपे आमार जीवाय। ये एक प्रार्थना है जो मैं कल बता रहा था, हरिदास ठाकुर जप करने से पहले ये प्रार्थना बोलते थे, कृपा करी आमार जीवाय नाचिते, हे प्रभु कृपा करके मेरी जीवा पर प्रकट हुई है, मुझे शुद्ध बनाइए। मैं 10 दिन पहले जगन्नाथपुरी में था जहाँ पर रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जा रहा था, लाखों की संख्या में भक्त हर साल आते हैं, और रथ यात्रा के एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की सफाई की जाती, क्यों, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी आने वाले हैं, भगवान जगन्नाथ को पवित्र स्थान में रखना है। तो कई भक्त हाथ में झाड़ू लेकर मटके में पानी लेकर स्वच्छ करते, स्वयं महाप्रभु उसमें भाग लेते थे, अपने हाथों से सफाई करते थे, और हरेक भक्त को बोलते थे कि आप भी सफाई करो, और हरेक को बोलते थे कि मैं जानूंगा कि आप कैसे सफाई कर रहे हो, कैसे जानूंगा कि आपने कितना धूल और घास के तिनके एकत्र किए। अगर कोई ज़्यादा अच्छा ज़्यादा कलेक्ट करता, हरेक को अपना एकत्र करना होता और एक पूड़ी बनाकर बताना होता, ये मैंने इतना कलेक्ट किया। तो महापुरुष जो ज़्यादा करते थे उनको बोलते थे बहुत अच्छा आपने अच्छा किया, और जो कम करते थे उनको डांटते थे कि आप ठीक नहीं कर रहे। जो ज़्यादा करते थे उनको इनाम मिलता था, इनाम क्या था, पीठा, जो मालपुआ और खीर, और जो कम करते थे उनको फाइन भरना पड़ता था, वो क्या था, वो भी मालपुआ और खीर। जो कम करते थे वो फाइन भरते थे और ज़्यादा करते थे उसको इनाम मिलता था, मंदिर कोई खर्चा नहीं होता, यहीं से लेकर वहाँ दे। एक दिन महाप्रभु सब भक्तों से सफाई करा रहे थे ऐसे, और एक भक्त थे, एक्चुअली कुछ भक्त छिप के थोड़ा सा पानी लेकर महाप्रभु के चरणों में डाल देते ऐसे, जैसे जानबूझ के नहीं, जानबूझ के लेकिन जानबूझ के नहीं, ऐसे दिखाते नहीं थे, ऐसे बस चलते चलते जा रहे आगे। फिर दूसरा भक्त पीछे से आता था और ऐसे पानी ले लेता था और तीसरे को देता हो, कुछ हुआ ही नहीं, छिप कर करते। लेकिन एक भक्त इतने भोले थे, एक गौड़ीय वैष्णव थे, उन्होंने क्या किया, सीधा मटका लिया, भगवान के पास गए, बैठे थे, उनके चरण को धोया और आपके सामने पीने लगे। महाप्रभु अंदर से प्रसन्न थे लेकिन बाहर से क्रोध दिखाया। महाप्रभु तुरंत स्वरूप दामोदर को बोले, स्वरूप दामोदर ये देखो, यही देख तुम्हारा गौड़ीय व्यवहार, ये आपके गौड़ीय वैष्णव का व्यवहार देखो। ईश्वरे मंदिरे मोरे पद धुआईला, भगवान के मंदिर में मेरे चरण धोए और आपने सही जल पान कईला, वो जल स्वयं पी लिया। की होबे मोर गति, भगवान बोल रहे मेरी क्या गति, जो पूरे दुनिया के गति को कर जो परम गति है, जिनके चरण ब्रह्मा और शिव जी के लिए पूज्य नहीं है, वो बोल रहे मेरी क्या गति हो। सरु दामोदर ने उस वैष्णव को बुलाया, उनके अब भगा दिया उनको। वह तो भगवान चैतन्य महाप्रभु दिखाना चाहते थे, लेकिन इसके पीछे प्रभुपाद रहस्य बताते हैं कि ये जो गुंडीचा मार्जन लीला है वो क्या बताती है, कि हमें अगर भगवान को अपने हृदय में बुलाना है तो हृदय को स्वच्छ बनाना होगा। चेतो दर्पण मार्जनम, मेरे हृदय को स्वच्छ बनाना हो तब हम भगवान को अपने हृदय में बुला सकें। तो ये जो स्वच्छ बनाने की प्रक्रिया है वो है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। जैसे कभी कभी मंदिर में हम हर रोज सफाई होती है, लेकिन कभी कभी एक महा क्लीनिंग होता है, अच्छी तरह सफाई की जाती है, ऐसे ये जो 15 दिन है हमारे हृदय के लिए विशेष है कि हम अपनी अपनी योग्यता के अनुसार 32 माला या 40 माला जितना भी हो सके एक्स्ट्रा जप करें। कई मंदिरों में ऐसे कई भक्त लिखते भी हैं महामंत्र, मान लो आप जप नहीं कर पा रहे, लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, हर रोज मुझे 10 पन्ने लिखना है हरे कृष्ण मंत्र, या हर रोज मुझे 2 घंटे कीर्तन एक्स्ट्रा करना है। हर एक भक्त को इस 2 सप्ताह में ज़्यादा से ज़्यादा नामस्मरण करना है। मैं वो कहानी बता रहा था हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी की, जब चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को डांट दिया कि आप आत्महत्या से भगवान नहीं मिलते, भगवान की प्राप्ति होती है किससे, भजन से, भोजन नहीं भजन से। प्रभु ने आगे बताया भजन मतलब नवविद्या भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णुस्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेद। फिर महाप्रभु अंत में बोले, तारमधे सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम लय पाए प्रेम धन। ये सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट है नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, निर अपराध भाव से भगवान का नाम लेना। चैतन्य चरितामृत में एक और उल्लेख आता है, हरिदास ठाकुर जब फुलिया में रह रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी का घर भी वहीं पर था थोड़ी दूरी पे, रघुनाथ दास के पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार और उनके चाचे का नाम था हिरण्य मजुमदार। तो एक दिन गोवर्धन मजुमदार ने हरिदास ठाकुर को अपने घर में बुलाया, बहुत सारे साधुओं को बुलाया, बहुत सारे विद्वानों को बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस रखा कि सबको बोला गया आप अपने अपने योग्यता के अनुसार भगवान के बारे में, भगवान के नाम के बारे में कुछ प्रवचन करो। तो सब जगह से बड़े बड़े महात्मा आए हुए थे, कुछ ज्ञानी थे उसमें, कुछ भक्त थे और एक ने बोलना शुरू किया, केहो बोले नाम हैते है पाप नाश। एक ने कहा कि नाम जप का फायदा क्या होता है, सारे पाप दूर हो जाते। केहो बोले नाम हैते मोक्ष, नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से मुक्ति मिल जाती। फिर हरिदास ठाकुर से पूछा गया, आपका क्या ओपिनियन है, नाम जप से पाप दूर होते हैं या मुक्ति मिलती है या और क्या प्राप्त होता है? हरिदास कहे नामेर एई दुई फल नाही है, नामेर एई दुई फल नाही है, दीज टू आर नॉट द रियल रिजल्ट ऑफ चैंटिंग। भगवान के नाम जप का असली फल ये सब नहीं है। नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए, असली नाम का फल है कृष्ण के चरणों में प्रेम जागृत होना, कृष्ण के प्रति आकर्षण जागृत होना। फिर उन्होंने भागवत से एक श्लोक बताया जो 11वें स्कंद में है, एवं रतस्व प्रिय नाम कृत्य जातानुराग द्रुत चित्त उच्चे हसति अतो रोदति रौति गायति उन्मादव नृत्यति लोकबायः। जब कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है वो कीर्तन में इतना आनंद लेता है कि वो कीर्तन लेते हुए नृत्य करने लगता है, कभी रोने लग जाता है, कभी विचलित हो जाता है और पागल की तरह बोलने लगता है और बाहर वाले व्यक्तियों की परवाह नहीं करता। तो आपने जो बताया ना मुक्ति और पाप दूर होना, ये तो नाम का असली फल नहीं है, ये है इंग्लिश में बोलते हैं बाई प्रोडक्ट्स, अपने आप मिल रहे हैं। जैसे आप रेफ्रिजरेटर खरीदी किया तो आपको साथ में एक कोई साबुन फ्री में मिल गया छोटा सा, कभी होता है ना मार्केट में कुछ खरीदी करो तो ये फ्री में मिल जाए, तभी 10,000-20,000 रुपये दे के आप साबुन नहीं खरीदी कर रहे। कोई बोले कि 20,000 रुपये का फल मिला मुझे, साबुन मिला, ये गलत है, ये तो बाई प्रोडक्ट है। तो हरि नाम लेने से मुक्ति होना, पाप दूर होना तो अपने आप हो ही जाएगा, लेकिन असली फल है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और फिर जैसे एग्जाम्पल दिया गया सूर्य का, सवेरे के समय जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय होने से पहले ही अंधकार थोड़ा दूर हो जाता है, अभी सूर्योदय हुआ नहीं है। ऐसे शुद्ध नाम आने से पहले नामाभास होता है और नामाभास की अवस्था में ही पाप दूर हो जाते हैं और मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। हरिदास ठाकुर ने बताया कि चोर, भूत प्रेत और सब जो असुरी प्रवृत्ति है वो सूर्य के उदय होने से पहले ही निकल जाते हैं, और जब वास्तव में सूर्योदय होता है तब फिर प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। इसलिए मुक्ति तुच्छ फल है। उदाहरण है अजामिल, म्रियमानो हरेर नाम घृणन पुत्रो उपार्चितम अजामिल अपि अगाध धाम किम उत श्रद्धया घृणन। अजामिल ने जब भगवान का नाम लिया, एक्चुअली भगवान को नहीं बुला रहे थे, वो नारायण नारायण बुला रहे थे। किसको बुला रहे थे? अपने बेटे को, लक्ष्मी नारायण नहीं, अजामिल नंदन नारायण ने बेटे को बुला रहे थे, लेकिन फिर भी उसको भगवान की कृपा मिल गई। तो जो श्रद्धा से नाम लेते हैं, आदर से लेते हैं, उनको उनको क्या गति होगी, उनका कहना ही क्या। और फिर उन्होंने एक श्लोक बताया, आप बोल रहे नाम जब से मुक्ति मिलती है, लेकिन भागवत के 3rd स्कंद में भगवान कपिल कहते हैं, सालोक्य सारिष्ट सारूप्य सामीप्यकृतम अपि उत दीयमानम न गृणंती विना मत सेवनम जना। मेरे भक्त सालोक्य सामीप्य 4 प्रकार के मुक्ति हैं, भगवान के लोक में रहना, सालोक्य सामीप्य, सामीप्य मतलब भगवान के करीब रहना, सारिष्टि भगवान जैसे ऐश्वर्य प्राप्त करना, सारूप्य भगवान जैसा रूप प्राप्त करना, और लास्ट में है सायुज्य। सायुज्य तो भक्त कभी भी नहीं लेते, सायुज्य मतलब भगवान में लीन हो जाना। तब उतने में ये सुन के एक ब्राह्मण जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती, वो टैक्स कलेक्टर थे, वो बहुत क्रोधित हो गए। वो बहुत सुंदर थे लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, आप क्या बकवास कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मुक्ति जो हिमालय में जाने के बाद 1000 साल में मुक्ति नहीं मिलती और वो नाम ये खाली हरे कृष्ण बोलने से मिल जाएगी। हे विद्वानों, ये भावुक भक्त है, इसको बुद्धि नहीं है, इसकी बातों पे भरोसा मत करो। कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने मुक्ति नहीं है, यही कहे नामावास से ही मुक्ति है। जो मुक्ति कोटि कोटि जन्म में ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ब्रह्म बोलने से नहीं मिलती और ये खाली हरे कृष्णा बोलने से मिल जाती है। तब हरिदास ठाकुर ने जवाब दिया, ये ध्यान से सुनिए बहुत इनका जवाब। हरिदास कहे केनो करे संशय, केनो संशय करे, वाई आर यू डाउटिंग, आपको शंका क्यों हो रही है। शास्त्र कहे नामाभास से मुक्ति है, मैं नहीं बोल रहा शास्त्र बोल रहे हैं, भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ है, भक्ति के आगे मुक्ति जो है वो तुच्छ है, अतएव भक्तगण मुक्ति नहीं लय। सिर्फ कोई व्यक्ति बहुत ही लाचार है, कोई छोटी नौकरी कर रहा है, उसको महीने का 2000 मिल रहा है तो कर रहे हैं, बाद में उसको बोलता है प्रभु जी आपको प्रमोशन होगा, आपको एक IAS ऑफिसर बना दिया जाएगा, तो उसके सामने ये 2000 की नौकरी क्या है, उसको वहाँ पे 1,00,000 मिल रहा है महीने का। तो ऐसे ये मुक्ति जो है कांच के टुकड़े के समान है और भक्ति असली हीरा है। जब व्यक्ति को भक्ति का अनुभव होता है तो वो जानता है कि मुक्ति, मुक्ति हाथ जोड़ के भक्त के दरवाजे के पास खड़ी रहती है सेवा के लिए। अष्ट सिद्धियाँ, मुक्ति, भक्त ये सब चीज़ों को तिरस्कृत कर देते, मुझे नहीं चाहिए, कैवल्य नरकायत। प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं कि जो कैवल्य भगवान में लीन होना वो नरक के समान। क्यों नरक के समान बोला गया? कैवल्य तो बहुत अच्छी चीज़ है, मुक्ति यानी दुख नहीं होना, कोई बीमारी नहीं होना, बुढ़ापा नहीं होना, लेकिन इसमें भगवान की सेवा का अवसर नहीं है। अगर भगवान की सेवा नहीं मिलती तो क्या लाभ है मुक्ति का। त्रिदश पूर आकाश पुष्पयते, इसको भगवान चैतन्य महाप्रभु कृपा मिल गई है उसके लिए त्रिदश पूर स्वर्ग का सुख वो है आकाश पुष्प। आकाश पुष्प मतलब आकाश के फूल, कौन से कलर के होते हैं आकाश के फूल? आकाश में फूल होते ही नहीं है, काल्पनिक, या घोड़ा डिम्ब, घोड़े के अंडे, घोड़े के अंडे के होते ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिसको मिल जाती है वह समझ जाता है कि ये ब्रह्मानंद भक्ति की जो आनंद है वो सागर के समान है और ब्रह्मानंद है वो एक बूंद के समान है। तो गोपाल चक्रवर्ती को और गुस्सा आ गया, गोपाल कहे नामाभास से यदि मुक्ति नहीं है तबे तुम्हारा नाक काटी, मैं आपका नाक काट दूंगा अगर आप जो बोल रहे हैं गलत। हरिदास हाथ जोड़ के बोले, हरिदास कहे यदि नामाभास से मुक्ति नहीं है तबे हमारा नाक आमी काटी मुँह, आप चिंता मत कर। देखो हरिदास ठाकुर कितने नम्र थे, अभी मुझे या आपको कोई बोले मैं आपका नाक काटूंगा तो हमारा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कितना गुस्सा आ जाएगा कोई बोले भी तो। और हरिदास ठाकुर इतने सीनियर वैष्णव हैं, उनको बुलाया गया चीफ गेस्ट के रूप में और ये बात अकेले में नहीं सब पब्लिक में हो रही है, लेकिन हरिदास ठाकुर क्रोध नहीं आया। ये महानता का लक्षण है। महानता का लक्षण ये नहीं है कि अगर उसने एक बोला तो मैं 4 सुना दूँ, है ना, इनका महानता है सहन करना। परीक्षित महाराज को शाप मिला, वो चाहते तो श्रृंगी ऋषि को बदले में शाप दे सकते थे, वो पावरफुल थे। आप तो मुझे 7 दिन बाद मरने के बोल रहे हो, तुम अभी मर जाओ, चलो बाद में देखा जाए, लेकिन परीक्षित महाराज ने सहन किया। जब चित्रकेतु महाराज को शाप मिला असुर बनने के लिए, चित्रकेतु महाराज पार्वती देवी को धन्यवाद दिए, तब नारायण भगवान शंकर जी बोले पार्वती को, ये है भक्तों की महानता, नारायणा परा सर्वे न कुतश्च न बिभ्यति स्वर्ग पवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थ दर्शन। नारायण के भक्त सहनशील, तो सहन करने की शक्ति ये हरिदास ठाकुर से हमें मांगनी चाहिए कि मेरे को भी सहन करने की शक्ति। इधर सब लोग जो सभा में थे सब खड़े होकर गोपाल चक्रवर्ती को डांटने लगे, ये क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े संत को हमने प्रवचन के लिए बुलाया है और आप उनका अपमान कर उनके नाक काटने की बात कर रहे हो, निकल जाओ, तुमको नहीं चाहिए हमको। उनको नौकरी से निकाल दिया और बलराम आचार्य उन्होंने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांट दिया, बोले तुम ही तार्किक है घटपटिया मूर्ख। घटपटिया, घटपटिया समझते हैं वो घटाक्ष पटाक्ष जो मायावादी यूज करते हैं ना एग्जाम्पल, कि एक मटका है उसके अंदर धरती है, तो उसकी लॉजिक उसकी तरह था। लॉजिक के द्वारा बुद्धि के तरके नाम की महिमा को नहीं जाना जा सकता। कोई मुझे बोलेगा प्रभु जी आप बोल रहे हो हरि के नाम में, हरि नाम भगवान से अभिन्न है, ये कैसे प्रूव कर सकते, ये भौतिक तर्क से नहीं समझा जा सकता। तर्क से परे है श्रद्धा, श्रद्धा से भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। तब सब भक्तों ने, हरिदास ठाकुर जाने लगे और सब भक्तों ने आके माफ़ी मांगी। हरिदास क्या बोले, तुम्हारा सबारा दोष नहीं, आपका दोष नहीं है, यही अज्ञ ब्राह्मण, ये ब्राह्मण भी अज्ञ है, अज्ञ मतलब ज्ञान जिसके अंदर नहीं है मूर्ख है। तार दोष ना ही, तार तर्क निष्ठ मन। कुछ लोग होते हैं हर एक चीज़ को तर्क से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन तर्क से भगवान तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता। तर्केर गोचर ना ही नामेर महिमा, नाम की महिमा कैसे पता चलती है? वैष्णवों से सुनने से, वैष्णव की सेवा से, उनके आशीर्वाद से। नहीं तो मायावादी लोग नहीं समझ पाते नाम की महिमा। आप सब घर में जाओ और कृष्ण का नाम लो, आप चिंता मत करो मेरा अपमान हुआ इसलिए। तो ये लास्ट प्रभुपाद जी का परपट सुनिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं, दिस शोज दैट हरिदास वॉज अ प्योर डिवोटी। आज ये सिद्ध हो जाते हरिदास शुद्ध भक्त थे, बिकॉज ही डिड नॉट टेक एनी बडीज इंसल्ट सीरियसली। बेइज्जती होने पर भी बुरा नहीं मांगा। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, त्रिणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णु न अमानी न मान दे न कीर्ति सदा, ये शिक्षा के मूर्तिमान उदाहरण हरिदास ठाकुर। अ वैष्णव इज ऑलवेज टॉलरेंट एंड सबमिसिव लाइक ट्री एंड ग्रास। ही टॉलरेट्स इंसल्ट्स ऑफर्ड बाय अदर्स फॉर ही सिंपली इंटरेस्टेड इन चैंटिंग द होली नेम विदाउट बींग डिस्टर्ब। एक भक्त जो है जब कोई उसको प्रतिकार करता है, आक्रमण करता है, तो बदला नहीं लेना चाहते, वो जप करते रहते। और इसके बाद क्या हुआ? तीन दिन भीतरे से ही विप्र कुष्ठ हैल, उस ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया। अति उच्च नासा, उसका बहुत सुंदर नाक था ऐसा कर्व्ड, गलिया पड़ीला, वो गल के गिर गया। चंपक कली सम हस्त, उसकी अंगुली इतनी सुंदर थी चंपक कली फूल के समान। कोंकड़ हैला सब कुश्ते गेला, उसको भी वो भी सब गिर गए। और सब लोग को हरिदास ठाकुर की महिमा पता चली, सब हरिदास को प्रणाम करने लगे। और हरिदास ठाकुर को जब पता चला तो बहुत दुखी हुए। अभी मैं होता, अगर किसी ने मेरा अपमान किया उसको सजा मिली तो कितनी खुशी होती है, इसने मेरा अपमान किया देखा वैष्णव परात। लेकिन हरिदास ठाकुर को बुरा लगा, रहे इतने इस भक्त को तकलीफ हुई। तो ये कुछ थोड़ी सी घटनाएं हैं हरिदास ठाकुर के जीवन से, जो दिखाते हैं कितना उनका भगवान के नाम में श्रद्धा थी। एक बार तो जहाँ वो जप कर रहे थे वहाँ पर एक सांप रहता था, बाकी उनको पता ही नहीं चला। और बाकी भक्तों ने देखा कुछ बदबू आ रही है कुछ, एक डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर बोले ये सांप है, यहाँ पे सेंटर चेंज करो, नया सेंटर खोलना होगा। हरिदास ठाकुर बोले मुझे क्या फ़र्क पड़ता है वो सांप हो या, मैं तो अपना नाम ले रहा हूँ। ठीक है, आपको चिंता हो रही है तो कल तक सुबह तक रुक जाओ, अगर कल सुबह तक ये सांप नहीं गया तो मैं चला जाऊँगा। और वो सांप तुरंत निकल गया। और प्रभुपाद जी बोलते हैं, लॉर्ड इन द हार्ट टोल्ड द स्नेक डू नॉट डिस्टर्ब माई डिवोटी, मेरे भक्त को तकलीफ मत दो, चले जाओ। तो इस तरह से हरिदास ठाकुर के जीवन पे विचार करने से, उनके उनसे प्रेरणा लेने से हम भी अपना नाम जब बढ़ा सकते हैं। दो क्षण आंख बंद करके प्रार्थना करें, ये सप्ताह ये 15 दिन हम नाम में रुचि बढ़ाने में लगाएं, संख्या भी और गुण भी, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ाएं, इससे भगवान राधा श्याम सुंदर प्रसन्न हो सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न या कोई कमेंट? अक्रूर प्रभु कुछ कमेंट? जय श्रील प्रभुपाद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, वर्ल्ड होली नेम वीक की जय।